समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी इस कार्यक्रम में होंगी देश विदेश की समाचार, इसके अलावा क्षेत्रीय संवाददाताओं से हम रूबरू होंगे, खेल मैदान और व्यापार जगत की हलचल पर भी नजर डालेंगे। बहुत कुछ रहेगा आज के अंक में। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
हेलो प्रियंका। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। और परिक्रमा तो रोज आता है, लेकिन एक मुद्दत बाद प्रियंका और सायरा
एक साथ आई हैं।
यस, सो आई एम श्योर मेनी लिसनर्स वुड ऑल्सो बी स्माइलिंग टुडे। एंड यस, एज प्रियंका राइटली टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो, सो without much ado let's start with the headlines first. Prime Minister Modi says India needs to become economically self-reliant in the next 10 years so that the nation is not impacted much by global factors.
आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस महीने की 15 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi accuses DMK of failing to safeguard the interest of Tamil Nadu over Kachchadeep island issue.
मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पूर्वोत्तर भारत में बारिश तेज होने का अनुमान व्यक्त किया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, मुंबई इंडियंस टू टेक ऑन राजस्थान रॉयल्स इन मुंबई दिस इवनिंग। And Priyanka, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And we all know that today being 1st of April is Utkal Divas, or as we commonly know as Odisha Day. Yes, 1st April is celebrated as Utkal Divas, also in the memory of the formation of the state as a separate state out of Bihar and Odisha province, with the addition of Koraput district and Ganjam district from the Madras Presidency on 1st April 1936. After losing its political identity completely in 1568, following the defeat and demise of the last king Mukundadev, efforts resulted in the formation of a politically separate state under the British rule on a linguistic basis.
जी हाँ, उड़ीसा नाम की उत्पत्ति अगर आपको बताएं संस्कृत के शब्द ओड्र से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश और ओड्र राज्य की स्थापना की। अपनी समृद्ध परंपरा और अपार प्राकृतिक संपदा से युक्त ओडिशा को प्यार से भारत की आत्मा कहा जाता है। तीन प्रसिद्ध मंदिर जो है स्वर्ण त्रिभुज कहलाते हैं, इनमें भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर हैं।
Yes, and apart from these architectural marvels, Priyanka, Odisha is a state that is resplendent with, you can say, its vibrant culture. Be it as you mentioned, the temples of Jagannath or the Sun Temple, or be it the paintings, the dance, or music. सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, isn't it? Let's start with the marvels of Jagannath Temple. The coastal town of Puri is home to the magnificent temple dedicated to Lord Jagannath, an essential pilgrimage site as part of the Chardham. The temple's construction is unique. The temple structure does not cast a shadow at any point of the day. तो आप सोच सकते हैं प्रियंका के उस जमाने के जो आर्किटेक्ट्स रहे होंगे उनकी क्या ही इंटेलेक्ट रहा होगा, isn't it?
बिल्कुल आप, और खासकर अगर आप एक राज्य की बात ना करें, आप साउथ में जाएं, किसी भी अन्य प्रदेश में जाएं,
yes.
हमारा जो पुरातत्व राय जो कला रही है वो अद्भुत है और आज भी रिसर्च का विषय है।
Absolutely, absolutely. And if you talk about the Jagannath Temple, this revered temple is globally renowned for its annual Rath Yatra or the Chariot Festival.
और हम बात करें वहां की कलाकृति की, पेंटिंग्स की, तो उसमें पट्टचित्रा भी शामिल है। उड़ीसा की कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो पट्टा शब्द है कपड़े का प्रतीक है, जबकि चित्रा चित्र का प्रतीक है। पट्टचित्रा एक पारंपरिक कला है जो पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जो अक्सर भगवान जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित विषयों पर केंद्रित होती है। इसके अलावा रॉक पेंटिंग्स होती हैं, रेत कला है, रेत कला में कच्चे माल के रूप में साफ महीन दाने वाले रेत और पानी के साथ कला का एक स्वदेशी रूप है, जिसकी उत्पत्ति हाल ही में एक रिसर्च में और तुलना करके अन्य रूपों से की गई है।
Yes, Priyanka, and I was talking about the Jagannath Temple. Let's also touch about the beauty of the Sun Temple. Crafted in the form of a colossal chariot adorned with 7 horses and 24 wheels, the temple was ingeniously designed to emulate the chariot of the sun god. This architectural marvel stands as a testament to the extraordinary vision and execution of its creators. Recognized as a UNESCO World Heritage Site, the temple's meticulous and intricate sculptural craftsmanship is a sight to behold. And Priyanka, you talked about the, you can see the paintings of Odisha. Let me also touch upon the musical culture of the state. Well, predominantly inhabited by diverse tribes, Odisha celebrates a tapestry of unique songs and dance styles, each distinct to its respective tribe. When exploring the multifaceted cultural facets of Odisha, one must not overlook Odissi music, which constitutes a distinct branch of Indian classical music. Even before the emergence of Odia language, Odissi songs had already been composed. Renowned Odia poet Jaydev was a pioneering figure in crafting lyrics meant for singing, laying the foundation for Odissi music. Unlike the rags found in Hindustani and Carnatic music, Odissi rags are characterized by swift beats in the Druta Tal, setting the backdrop for the classical Odissi dance form.
और अब इसी पर एक हमारे पास संगीत है, आइए सुनते हैं।
And let's also listen to Vande Utkal Janani, which is another masterpiece from Odia music.
Vande Utkal Janani,
Vande Utkal Janani, Vande Utkal Janani,
Vande Utkal Janani,
Vande उत्कल जननी
वंदे उत्कल जननी
चारुहा समय।
और अब ओडिसी जो नृत्य है उसको छूते हैं। ओडिसी भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ओडिसी की उत्पत्ति ओडिशा के मंदिरों में हुई थी। इसकी विशेषता इसकी चाल, पदयात्रा, हावभाव या कहें मुद्राएं और वेशभूषा है। ओडिसी आमतौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा की कहानियों को दर्शाता है। इसके अलावा गोटीपुआ है। गोटीपुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा में हुई। युवा लड़के महिला पात्रों के वेश में पौराणिक कहानियां सुनाने के लिए लयबद्ध करते हैं और कलाबाजी करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो संबलपुरी लोक नृत्य भी काफी मशहूर है उड़ीसा में। संबलपुरी लोक नृत्य में उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से संबलपुर जिले के विभिन्न पारंपरिक नृत्य रूप शामिल हैं। इन नृत्यों की विशेषता जीवंत वेशभूषा, लयबद्ध पदयात्रा और जीवंत संगीत है। कह सकते हैं नृत्य हो संगीत तो इतना समृद्ध है कि जितनी बात करें उतनी कम है। इसमें जैसे अगर हमने नृत्य की बात करी तो एक शैली और है छऊ, जिसे एक मार्शल नृत्य शैली है जो उड़ीसा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा घुमरू नृत्य है। घुमरू नृत्य ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें नर्तक घुमरस नामक छोटे ड्रम पकड़ते हैं और ड्रम की ताल पर समकालिक गतिविधियां करते हैं।
And if we talk about the language of the state, well, the predominant language spoken by the majority of the population is Odia. This language, belonging to the Indo-Aryan family, shares close linguistic ties with Bengali and Oromia. However, the Adivasis in the state continue to communicate in several tribal languages, which are part of the Dravidian and Munda language families. Aur Priyanka, agar jo hai baat ki jaye, sabse keh sakte hain important aspect kisi culture ka hota hai, wo hota hai
vyanjan hai.
Yes.
Pehle pet puja waise फिर काम दूजा कहते हैं, लेकिन हम आखिर में आ रहे हैं, टच करें ताकि आप इसका स्वाद ले सके आराम आराम से. तो इसमें अगर ओडिशा के जो व्यंजनों की बात करें, उसमें जो काफी लोकप्रिय है वो पखला भाटा है. ये चावल और पानी से बना एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे तली हुई या करी वाली सब्जियों के साथ परोसा जाता है. इसके अलावा दही बैंगन है, वो काफी मशहूर है. छेना पोडा है, माचा घंटा है, ये एक पारंपरिक मछली करी है जो विभिन्न सब्जियों और मसालों के साथ तैयार की जाती है. इसके अलावा दलमा है, बड़ी चूड़ा है, चिंगुड़ी झोला है, रसबली है. रसबली में इलायची और केसर के स्वाद वाले गाढ़े मीठे दूध में भिगोए गहरे तले हुए पनीर पैटीज से बना एक और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन तैयार किया जाता है.
यस, एंड अनलाइक अदर स्टेट्स ऑफ आर कंट्री प्रियंका, उड़िया पीपल लाइक वेरी लेस ऑयली एंड लेस स्पाइसी फूड. नन द लेस इट्स वेरी हाई ऑन फ्लेवर. एंड यू मेंशन सम ऑफ द प्रोमिनेंट डिशेस. Well, even pakla, you know, the chena poda, as you say, that is a very, very, you can say, sought after dessert. Apart from that, a lot of you can say dishes made out of fish, you know, because hum log jante it's a coastal state. तो जाहिर है मछली से बनी हुई बहुत सारे वहां पे डिशेस
सी फूड्स है. yes. और आपको ये भी बता दें कि जो उड़ीसा की सात वस्तुओं को जीआई टैग यानी भौगोलिक सूचकांक टैग दिया गया है, तो इन सात वस्तुओं के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं. वो है खजूर गुड़, ढेंकानाल का मगजी लड्डू, शिमली पालकी काई चटनी, नयागढ़ का कंटेई मुंडी बैंगन, कपड़ा गांडा, डुंगरिया कंध के हाथ से बुने हुए कढ़ाई वाले शॉल, कोरापुट का काला जीरा चावल और लांजिया सॉरी के पट चित्र यानी एडिटल शामिल हैं.
सो ही इज विशिंग एवरीवन ऑफ ओडिशा एंड अ वेरी वेरी हैप्पी ओडिशा डे फ्रॉम द टीम ऑफ परिक्रमा एआईआर.
और अब समय अपने संवाददाताओं से जुड़ने का.
यस प्रियंका, नाउ इट्स टाइम टू बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ आवर शो, दैट इज चलेंगे देश की परिक्रमा करने. और आज के सफर की शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम अप नॉर्थ इन लद्दाख. वेल, टुडे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज भूति डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंशियंट लैंग्वेज ऑफ लद्दाख. It is a language spoken by the people of the Himalayan states in a different name from Ladakh to Arunachal Pradesh and Skardu and Gilgit in Pakistan occupied Kashmir as well. And our Leh correspondent Yangchan Dolma has filed this report.
Awareness on the importance of Bhoti language is being held in every corner of Ladakh. Bhoti as a language stands as a symbol of unity in diversity as people from different region, religion, culture and as well as countries come together through shared language. It is a language with rich history and literature. 1st April is marked as the Bhoti Day in entire Ladakh ever since a private bill for recognition of Bhoti language in the 8th schedule of the constitution had moved by the Lok Sabha member of parliament Ladakh Jamyang Tsering Namgyal in the Lok Sabha on this day in 2022. Different activities held in almost all the school in Leh district to mark the occasion of Bhoti Day. Since Bhoti is the root of culture and religion of Himalayan region in the country, students excitedly wore the traditional costume which had been made as a dress code in the school for this language day today. The young students have enjoyed the traditional cuisines of Ladakh for the lunch in the school beside different co-curricular activities on the theme of Bhoti language in the school. Central Institute of Buddhist Studies, deemed to be university under Minister of Culture, has organized a day-long seminar on the theme of Bhoti, the root of Himalayan religion and culture, to mark the occasion. Also, the Academy of Art and Culture Language, in collaboration with Cultural Forum, organized a seminar on the theme of importance of Bhoti language and its present status. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
सायरा, किसी ने कितना सही लिखा है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, और हमारे देश में वाकई में ऐसा होता है। कितनी असंख्य भाषाएं, कितनी बोलियां हैं हमारे देश में, पर जरूरत यह है आज के समय में जैसे वो लुप्त हो रही हैं, हम अपनी मातृभाषा, अपनी मदर लैंग्वेज बोलते जा रहे हैं, तो उसे सहेजने की जरूरत है। और खासकर जो एक हमें भूती दिवस के रूप में जो मनाया गया है लेह लद्दाख में, संरक्षित करने के लिए, सहज उसको प्रिजर्व करने के लिए एंशियंट लैंग्वेज को, तो बहुत अतुलनीय प्रयास है।
यस, आई थिंक अ वेरी मेजर फैक्टर इज दैट वी शुड टेक प्राइड इन आवर लैंग्वेज, एंड इवन दो टुडे वी डोंट कॉल इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, नॉन द लेस जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आर किड्स यू नो द स्क्रिप्ट एज वेल एंड इवन हाउ टू यू नो स्पीक इन दैट लैंग्वेज,
और उसमें उनका मानसिक विकास अधिक होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं बहुजन हिताए बहुजन सुखाए के साथ। आकाशवाणी लंबे समय से लोक प्रसारक के रूप में पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा दे रहा है, और आज आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम स्टेशन अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पूरे कर रहा है, और इस दौरान कई आयोजन किए गए हैं। आइए जानते हैं अपनी संवाददाता मयूषा से इस बारे में और जानकारी।
The Akashvani Tiruvananthapuram station began in 1943 as Travancore radio station became the part of Akashvani on April 1, 1950. Renowned Malayalam writer George Onakur will inaugurate the celebrations today at the station. As part of the year-long celebrations, various programs will be organized in districts of Tiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha and Kottayam. Widely appreciated programs of Akashvani such as Sahitya Rangam, Vailam Veedam, Kudumbarogyam, Nadagam, etc. will be presented as part of the celebrations. Various events including literary sections, poetry recitals, drama performances, medical camps, agriculture fairs, plays, etc. will also be organized. Former employees of Akashvani will also become part of various programs. The Tiruvananthapuram station will broadcast various programs of Akashvani from 1950 to 2024 as part of the year-long celebrations. Mayusha for Parikrama from Tiruvananthapuram.
And now, in view of the upcoming Lok Sabha polls, we present you a capsule based on the state profiles, giving details of number of phases, date of polling, number of seats, and other relevant facts by our correspondents. So, where are we starting from today, Priyanka?
Madhya Pradesh se. चलते हैं उसकी ओर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हो चुके हैं। इन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही प्रचार ने भी गति पकड़ ली है।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ शामिल हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में अब तक 8 नामांकन पत्र भरे गए हैं। राज्य में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य में 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल अथवा किसी भी अन्य तरीके से इनका प्रचार प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
एंड नाउ वी हैड टू तमिलनाडु। तमिलनाडु विल वोट फॉर लोकसभा इलेक्शंस इन अ सिंगल फेज ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ। द स्टेट हैज 39 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। विरुधुनगर सीट इज इंटरनेशनली फेमस फॉर क्रैकर्स एंड द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। The constituency has 6 assembly segments and a total number of 15,55,186 voters who are ready to exercise their franchise. And we have more details from our correspondent.
In the Virudhunagar Lok Sabha constituency, Tiruparankuntam, Tirumangalam, Sathur, Sivakasi, Virudhunagar, Arappukottai are 6 assembly segments in which 4 constituencies belong to the DMK and Congress combined and 2 belong to the AIADMK. Tiruparankuntam is located in Madurai district and is famous for its temples. Sivakasi is known for its multi-million dollar firecracker and safety matches industry with more than 1,000 cracker manufacturing units. It is also called as the Little Japan because of the production of printing modern day requirements. Sathur is famous for manufacturing steel rolling mill and manufacturing of fountain pen nibs. Virudhunagar is also famous for production of chicory, coffee seeds, millets, dry chilies and pulses. This time it is a 3-cornered contest in Virudhunagar. A total of 27 candidates are in the fray. As BJP is contesting the election along with smaller allies, its strength in the state will be tested this time. The party has fielded popular actress Radhika Sarathkumar opposite Congress candidate Manikantha. support. The star couple Radhika and her husband Sarath Kumar joined the party recently after Sarath Kumar merged his party, the Samatva Makkal Katchi, with the BJP. Another popular candidate who is new to electoral politics is Vijay Prabhakaran, the son of late actor-politician Vijaykanth, the founder of DMDK, which is now an ally of the AIADMK. Joy, Akashwani, reporting from Chennai.
और अब रुख करते हैं बिहार का. बिहार में निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में हर वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है. प्रयास ये है कि युवा हो या बुजुर्ग, सभी तरह के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में जरूर भाग लें. राज्य की सभी 40 संसदीय क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 57% मतदान हुआ था. कई इलाकों में राज्य के औसत से भी कम वोट डाले गए थे. इसे देखते हुए संबंधित क्षेत्रों की पहचान कर वहां मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. स्वीप अभियान के तहत युवा, महिला, दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है. प्रदेश में 7,67,00,000 से अधिक वोटर इस बार लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. आइए सुनते हैं इस पर धर्मेंद्र की खास रिपोर्ट.
लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार में प्रचार प्रसार के पारंपरिक साधनों के साथ नए हाईटेक तरीकों को भी अपनाया जा रहा है. मतदाता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक से लेकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है. महिला वोटरों को प्रेरित करने के लिए शेखपुरा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने एक गृहिणी को प्रतीक बनाकर भाभी जी नाम से चुनाव शुभंकर को लॉन्च किया है. सरकारी कार्यालयों के आसपास इसके सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां लोग चुनाव के इस आइकन के साथ सेल्फी ले सकते हैं. वहीं कैमूर, सारण, दरभंगा, मधुबनी और किशनगंज जिले सहित कई अन्य जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाए हैं. दिव्यांगजनों को प्रेरित करने के लिए दिव्यांग हस्तियों को आइकन बनाया गया है. जमीनी स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले ओपिनियन मेकर जैसे जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, विकास मित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी घर घर मतदाता जागरूकता अभियान में मदद ली जा रही है. शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के स्वच्छता वाहनों और सीसीटीवी कैमरों के साथ लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी बार बार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं. चुनाव साक्षरता क्लब के माध्यम से स्कूली बच्चों को लोकतंत्र में मतदान के महत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है. मकसद है कि ये बच्चे निर्वाचन आयोग का संदेश वाहक बनकर अपने माता पिता और परिजनों को वोट डालने के लिए प्रेरित करें. कई स्कूलों में जिला प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों के माध्यम से शपथ पत्र भी भरवाए हैं. परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Avanti Bai Lodhi, who participated in the first war of Indian independence in 1857.
Avanti Bai Lodhi was born on the 16th of August 1831 in Sivni, Madhya Pradesh. She married Prince Vikramaditya Lodhi, the son of Raja Lakshman Singh of Ramgarh. Rani Avanti Bai Lodhi took up the reins of administration of the state in her hands on behalf of her minor son, Amar Singh, following the Raja's ill health. When Raja Vikramaditya Singh died in 1851, the British authorities decided to pass the Ramgarh's administration over to a court of ward in total disregard of the Rani. She strongly resented the British action.
During the First War of Indian Independence, Rani Avanti Bai joined the independence activists by commandeering the Ramgarh troops and confronted the British in Sohagpur. Rani Avanti Bai defeated the British in the battle. Stung by the defeat, the British came back with vengeance and launched an attack on Ramgarh. Avanti Bai resorted to guerrilla warfare to fend off the British army. In the decisive battle in the hilly region of Devharigarh on the 1st of April 1858, the combined forces were defeated by the British. The Rani had to retreat to Ramgarh, where she and her followers were encircled.
While many accounts claim that Avanti Bai took her own life to evade capture when the defeat was imminent, other accounts claim that she died in captivity in August 1858. She is remembered through performances and folklore and continues to inspire people. we salute the great freedom fighter.
We also remember martyr Anand Charan Malik, a shopkeeper in the Dharamtola area of Kolkata, who died on the 1st of April 1930.
Charan Malik, along with other people of the area, was dissatisfied with the new rules of trade implemented by the British administration. They objected to the new rules on the ground that their livelihood will be adversely affected, and hence decided to hold a demonstration. On the 1st of April 1930, the carters, in unison, removed their animals from the carts and left their carts on the roads. The arrival of the police to clear the main roads by force resulted in pitched battles. Soon, the agitating carters were joined by the sympathetic public in a large number. The police resorted to firing on the crowd, killing Anand Charan Malik and six others. We salute the great son of the soil.
We also remember martyr Varyam Singh, who participated in the 11th Non-Violent Shahidi Morcha to Jaito Gurdwara, Gangsar, Nabha, in 1925 against the British order, prohibiting all prayer assemblies in the area. Jaito, the British led troops stopped it and arrested a large number of its participants. Varyam Singh was also arrested and tortured to death in Nabha Bir Jail on the 1st of April 1925. We salute the great son of the soil.
On this day, we also remember freedom fighter Rahim Ali Khan, who led independence activists during the First War of Indian Independence in 1857. He was caught by the British in the course of an engagement and sent to the Andaman Islands on the 7th of March 1859 and died in imprisonment on the 1st of April 1859. We salute the great martyr.
And if you talk about news from the business world, benchmark equity indices kicked off the financial year 2024-25 on a strong note as the Sensex and Nifty both touched fresh highs in intraday trade today. If you talk about Sensex, it gained 363 points to close at 74,015, while Nifty climbed 135 points to settle at 22,462, and in fact during the day it touched a record peak of 22,530 as well. And Priyanka, what's the news from the world of sports?
जी हाँ, IPL क्रिकेट चल रहा है तो उसी का बहुत रोमांच बना हुआ है. IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. कल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया. और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं और इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं. चाह अधूरी, राह अधूरी, जीने का अरमान अधूरा, शायद इस अधबनी धरा पर मैं पहला इंसान अधूरा. एक अलग तेवर और सोच के साथ सबको अपनी लेखनी से प्रभावित करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी जी ने आज ही के दिन 2015 में दुनिया को अलविदा कहा था. उनका पहला कविता संग्रह संक्रांत था. उसके बाद प्रकाशित उनकी कविता संग्रह जैसे देहांत से हटकर में उन्होंने अपने समय, समाज, राजनीति और व्यवस्था से नाराजगी की व्यथा लिखी. उन्हें हिंदी अकादमी सम्मान व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है.
Today we are also remembering K.V. Narayan Swami, who is considered to be among the finest Carnatic music vocalists of the 20th century. Today is his death anniversary. He was awarded the Madras Music Academy's Sangeet Kalanidhi Award in 1986. Let's listen to one of his renditions.
हर कवि रचनाकार का जीवन के बारे में अपना अपना फलसफा और सोच होती है. जैसे अगले जिस कवि को हम याद कर रहे हैं, उनका मानना था कि कविता जीवन को दांत बनाती है. जी हां, प्रगतिशील काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल ने लगभग 9 दशकों का जीवन उदारता के साथ जीने की कोशिश की और उनकी रचनाओं में युग की गंगा फूल नहीं शामिल है. और अब जाते जाते याद करते हैं गुजरे जमाने की अभिनेत्री जबी जलील को. बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान है. और उनकी फिल्मों की बात करें तो उसमें रात का राही काफी मशहूर रही. और जाते जाते उन पर फिल्माया ये गीत सुनते हैं. पर जाने का समय है कह रहा है, तो प्रियंका अरोड़ा और सायरा मुश्तबाक को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।